दिन भर 10 अप्रैल दिन सोमवार, मैं हूं रेहान फजल। पाकिस्तान में भारतीय जासूस होने के आरोप में गिरफ्तार कुलभूषण जाधव को मौत की सजा।
एक साल होने के बावजूद और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई रिक्वेस्ट के बाद भी इनको काउंसलर एक्सेस कुलभूषण साहब को नहीं दिया गया है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली स्वीकार किया है ये इंडियन सिटीजन है।
जानेंगे कश्मीर के युवा क्या सोचते हैं वहाँ के मौजूदा हालात के बारे में।
एक आई ओपनर है दिल्ली के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, समझने के लिए कि 7% जो टर्नआउट है विच इज ऑलमोस्ट नो।
होंगे आपके पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। पाकिस्तानी सेना की कोर्ट में भारत के कथित जासूस कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। कुलभूषण जाधव को बीते साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उन पर पाकिस्तान में जासूसी करने का आरोप लगा था। उधर भारत ने मौत की सजा दिए जाने की स्थिति में इसे जाधव की सुनियोजित हत्या करने की कोशिश बताया है। भारत के विदेश सचिव ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने के बाद पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित को तलब किया और उन्हें भारत सरकार की प्रतिक्रिया सौंपी। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि दुनिया में जो लोग मासूमों को निशाना बनाते हैं अमरीका उनका संज्ञान लेगा। वो G7 देशों के विदेश मंत्रियों की इटली में आयोजित बैठक के पहले बोल रहे थे। इस बैठक में सीरिया में हुए रासायनिक हमले को लेकर चर्चा होनी है। उम्मीद है कि बैठक में हिस्सा लेने वाले विदेश मंत्री रूस पर सीरिया सरकार से दूरी बनाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। रूस ने सीरिया पर अमरीकी हमले के बाद कहा था कि हमले से जाहिर है कि अमरीका सहयोग का इच्छुक नहीं है। वहीं रेक्स टिलरसन ने 1944 में हुए नरसंहार की याद में इटली के टूस्कानिया में आयोजित समारोह में कहा,
We remember the events of August 12, 1944 that occurred in Santana.
हम सांटाना में 12 अगस्त 1944 को हुई घटना को याद कर रहे हैं। हम इस बात के लिए समर्पित हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी जो लोग मासूमों के खिलाफ अपराध करते हैं हम उनका संज्ञान लेंगे और ये जगह हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। ये थे अमरीकी विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्पेन में रूस के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें संदेह है कि इस व्यक्ति ने कंप्यूटर सर्वर को हैक करते हुए अमरीका में बीते साल हुए राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। स्पेन और रूस की मीडिया में गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पीटर लोवाचोव के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें शुक्रवार को बार्सिलोना से गिरफ्तार किया गया। रूस इस बात से इनकार करता रहा है कि उसने अमरीकी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में कल हुए आत्मघाती धमाके में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आखिरी विदाई देने आए लोगों ने चर्च में प्रार्थना की। हमले के बाद मिस्र में 3 महीने के लिए आपातकाल लागू कर दिया गया है। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दक्षिण कोरिया और चीन के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि अगर उत्तर कोरिया एक और परमाणु डिवाइस या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण करता है तो वो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर कोरिया संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बाद भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने में लगा है। कोरियाई प्रायद्वीप के शांति और सुरक्षा मामलों के विशेष प्रतिनिधि किम होंग ने कहा,
तो यांचिकन भूखन इरन कुछ सावे क्योंगोई तो फुर्गो हागो।
दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी के बाद भी अगर उत्तर कोरिया परमाणु या मिसाइल परीक्षण जैसी उकसावे वाली कार्रवाई करता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के मुताबिक उसके खिलाफ अतिरिक्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे से बातचीत की सहमति बनी है। ये थे किम होंग के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान की जनसंख्या से जुड़े ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश की आबादी तेजी से घट रही है। अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो अगली आधी सदी के अंदर आबादी एक तिहाई घट जाएगी। बीते कुछ सालों में जनसंख्या दर में मामूली इजाफा हुआ है और अनुमान है कि इससे गिरावट में थोड़ी कमी आएगी। अनुमानों के मुताबिक साल 2065 तक 8,80,00,000 जापानी लोग होंगे। फिलहाल उनकी आबादी 12,60,00,000 है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। साल भर पहले पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए कुलभूषण जाधव को वहां की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। भारत ने मौत की सजा दिए जाने की स्थिति में इसे जाधव की सुनियोजित हत्या करने की कोशिश बताया है। मार्च 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण पर भारत के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के कथित इकबालिया बयान का एक वीडियो जारी किया था, जिसे भारत सरकार ने डॉक्टर्ड बताया था। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
भारत सरकार ने पाकिस्तानी उच्च आयुक्त अब्दुल बासित को तलब कर कहा कि कुलभूषण जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए ये मुकदमा ही बेमानी है। साथ ही ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कायदों के उल्लंघन में पिछले एक साल से भारतीय दूतावास की ओर से जाधव को मिलने की सभी 13 दरख्वास्त पाकिस्तानी अधिकारियों ने अनसुनी कर दी। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं और उन्हें बलूचिस्तान में जासूसी करते पकड़ा गया था। इसके सबूत के तौर पर पिछले साल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उनके कथित इकबालिया बयान का एक वीडियो भी जारी किया।
I joined in National Defence Academy in 1987 and I subsequently joined Indian Navy in January 1991.
वीडियो में कुलभूषण को ये कहते हुए बताया गया कि उन्होंने 1987 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी और उसके बाद 1991 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। 6 मिनट के इस वीडियो में कुलभूषण ने बताया कि उन्होंने साल 2013 में रॉ के लिए काम करना शुरू किया।
गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस विद इन इंडिया।
बात यही नहीं रुकी, पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठाया। लेकिन पाकिस्तान के दावे के अगले ही दिन भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि कुलभूषण जाधव को प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत ने ये तो माना कि कुलभूषण भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया। सरकार के मुताबिक कुलभूषण जाधव का जन्म 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। सरकार ने कहा कि कुलभूषण ईरान में कानूनी तरीके से अपना कारोबार चला रहा था और उसके अपहरण की आशंका जताई। पाकिस्तान पिछले कई दशकों से भारत पर बलूचिस्तान में अलगाववाद भड़काने के आरोप लगाता रहा है। रक्षा मामलों के जानकार मारूफ रजा के मुताबिक कुलभूषण जाधव के मामले से भी इन आरोपों को कोई बल नहीं मिलेगा।
पाकिस्तान से ये सवाल पूछना चाहिए कि पिछले 10-12 साल से आप भारत के ऊपर जो बलूचिस्तान का ब्लेम डाल रहे हैं, ठीक है अगर भारत ने कुछ किया भी होगा वहां पे, लेकिन उसका अभी तक कोई खास एविडेंस नहीं वो प्रूव कर पाए। एक कुलभूषण को भी किडनैप किया है उन्होंने ईरान से। बलूच प्रॉब्लम तो मार्च 1948 से चलता आ रहा है। सन 1948 से बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान सरकार की झड़प चल रही है, तो उस टाइम भारत का क्या हाथ था उसके अंदर? उसने 50-60 साल तो भारत ने कुछ किया नहीं, वो कुलभूषण की उम्र से ज्यादा है। कुलभूषण साहब तो 46-47 साल के हैं।
भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक स्तर पर झगड़ों का लंबा इतिहास है और वो एक दूसरे के इलाकों में जासूस भेजने के आरोप लगाते रहते हैं। हालांकि मारूफ रजा के मुताबिक ताजा घटनाक्रम से भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद भारत सरकार और राजनीतिक पार्टियों में अब भी पाकिस्तान से बातचीत और भाईचारे की ओर कदम उठाने की ही मंशा प्रबल दिखती है। दिव्या आर, BBC, दिल्ली।
कश्मीर में अनंतनाग सीट पर हो रहे उपचुनाव में PDP के उम्मीदवार तसद्दुक मुफ्ती ने चुनाव आयोग से अपील की है कि वो उपचुनाव को स्थगित कर दें। श्रीनगर सीट के लिए उपचुनाव में भी बहुत कम लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया था। थोड़ी देर पहले मैंने श्रीनगर में BBC संवाददाता रियाज मसरूर से संपर्क किया और पूछा कि तसद्दुक मुफ्ती की इस मांग के पीछे क्या वजह हो सकती है।
जी, तसद्दुक मुफ्ती ने तो आज सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर निर्वाचन आयोग से गुजारिश की कि जिस तरह से श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हालात रहे उससे काफी जाने गए, 8 लोग मारे जा चुके हैं, 200 लोग घायल हैं, तो वो चाहते थे कि मतदान को डिले किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर श्रीनगर में ये हालत है तो दक्षिणी कश्मीर में पहले से ही हालात जो हैं वो संवेदनशील हैं, इसलिए उन चुनावों को पीछे किया जाए। तो उनके समर्थन में BJP जो कि PDP का पार्टनर है, इसमें गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर है, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। उसके साथ जो कुछ निर्दलीय हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो उसके बाद जो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करने के जिम्मेदार होते हैं, उन्होंने ऑल पार्टी मीट बुलाया, अभी थोड़ी देर पहले वो खत्म हुआ है। तो उसमें काफी तूतू मैमे भी हुई जो अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाकी दलों के साथ, क्योंकि वो चाहती है। अपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए इसको बहाना बनाकर चुनाव को पीछे न किया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि चुनाव के लिए वक्त सही नहीं है, जिस पर सरकार ने कहा कि नहीं चुनाव होने चाहिए। तो ये एक डेडलॉक सा बना हुआ है, लेकिन असली फैसला दिल्ली में जो है निर्वाचन आयोग लेगा और वो शाम में एक मीटिंग ले रहे हैं, तो उसके बाद वो देखा जाएगा कि बुधवार के चुनाव जो है वो होंगे या नहीं। लेकिन कल जो चुनाव में हिंसा हुई है या जो हालात बने हैं उसने एक शैडो डाला हुआ है इस पर, एक जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो बुधवार को इलेक्शन होने में।
तो कल जो श्रीनगर में जो बहुत कम मतदान हुआ और बहुत हिंसा हुई, क्या वजह रही, क्यों लोग निकल कर नहीं आए सामने?
हाँ जी, देखिए अगर हम कुछ 10-15 वर्षों की बात करें तो जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह रही है और जब जब भारत सरकार ने अलगाववादियों के साथ बातें की हैं या एक जो है एक प्रक्रिया चली है, तो उस दौरान में हमने देखा कि कश्मीर में शांति रही है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हार्ड लाइन पॉस्चरिंग होती है तो तब यहाँ पे हालात ऐसे ही संवेदनशील हो जाते हैं, ऐसे ही हालात भड़क उठते हैं। तो जाहिर है जब से मोदी सरकार दिल्ली में आई है तब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन जो है वो ट्रेडिशनल से हटके एक हार्डलाइन पोस्चरिंग है और पाकिस्तान के साथ भी हालात ठीक नहीं है, दोनों देशों के बीच जो है कई मामले हैं, तो जाहिर है उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी वजह ये है कि इन 2 वर्षों के भीतर जो है जो यहाँ के युवा हैं उनको काफी कठिनाइयों का सामना रहा, बल्कि जो पिछले वर्ष बुरहान वानी की जो है उनको मारा गया, तो उनके बारे में भी सभी लोग यही कह रहे हैं, ये छप चुका है और बातें सामने आ चुकी हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि वो पहले मिलिटेंट नहीं थे बल्कि उनको रास्ते चलते हुए पुलिस ने पीटा था, जिसके बाद वो भावुक होकर जंगलों की तरफ चले गए। और यही हाल तकरीबन सभी उन युवाओं का है जो घर छोड़कर जंगलों में जाते हैं और उसके बाद मिलिटेंट रैंक्स में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से यूथ को एंगेज करने की पॉलिसी अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही है मोदी सरकार की तरफ से, यही वजह है कि यूथ जो है वो अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं और वो गुस्सा फिर स्प्रेलिंग इफेक्ट की तरह हर जगह फैलता है।
ये थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। जैसा कि आपने सुना, पीडीपी के सांसद तारिक हमीद कर्रा के इस्तीफे के बाद खाली हुई श्रीनगर की सीट के लिए रविवार को उपचुनाव हुआ जिसमें सिर्फ 7% ही मतदान हुआ। अलगाववादियों के बहिष्कार के आवाहन के बीच इस मतदान के दौरान और उसके बाद हिंसा की खबरें भी आईं। इस हिंसा के बाद घाटी में इंटरनेट सेवाओं को ठप कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब किसी चुनाव में मतदान का प्रतिशत इतना कम रहा हो। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने कुछ कश्मीरी नौजवानों से बात की और जानना चाहा कि आखिर वो मौजूदा हालात के बारे में क्या सोचते हैं।
जी, मेरा नाम कोमल सिंह है, मैं बारामूला से हूँ और मैं JNU में PhD कर रही हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में।
मेरा नाम इशा जहरा है, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में और मैं श्रीनगर से हूँ।
मेरा नाम यासिर बशीर है, मैं बाणीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में PhD कर रहा हूँ डिपार्टमेंट हिस्ट्री एंड कल्चर।
मेरा नाम बशारत अली है और मैं बारामूला से हूँ और मैं यहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में PhD कर रहा हूँ अकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से।
मेरा नाम रुआ शाह है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, IALS में काम करती हूँ, श्रीनगर से हूँ।
तो ये सारे नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं कश्मीर से ताल्लुक है इनका, ये मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले आपसे कोमल के, ये पोलिंग परसेंटेज जो 7% आया है ये किस बात का इंडिकेशन है, क्या संदेश इससे जाता है?
अगर आप मुझे एक लाइन में बोलने के लिए तो मैं ये कहूंगी कि इट्स एन आई ओपनर फॉर दिल्ली, उनको समझना चाहिए कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। एक आई ओपनर है दिल्ली के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, समझने के लिए कि 7% जो टर्नआउट है विच इज ऑलमोस्ट नो।
चुनाव अगर लोगों को नहीं चाहिए, लोग चाहते नहीं है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में वो हिस्सा लें, तो हाल में 2015 में जो इलेक्शन हुए उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, तो क्या ये दो अलग अलग बातें नहीं हो गई?
आई थिंक जो अभी के इलेक्शंस है दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द डिसेंट ऑफ द रीसेंट प्रोटेस्ट जो अभी कश्मीर में हो रहे हैं और जो पिछले 6 महीने कश्मीर में हुआ और इतनी किलिंग्स हुई एंड उसके इमीडिएटली बाद आप कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्शंस, तो ऑब्वियसली दिस इज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट, तो ये लोगों का प्रोटेस्ट का जरिया है।
मैं यासिर आपसे पूछना चाहूंगा, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो है वो एक बहुत बड़ा वेपन होता है और उसका इस्तेमाल भी हुआ है कश्मीर में, लोकसभा के इलेक्शंस हुए हैं और असेंबली के भी इलेक्शंस हुए, हाल ही में 2015 में हुए जिसमें महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी हैं। ठीक है, बॉयकॉट अपनी जगह पर है, अगर बॉयकॉट भी करने का राइट है उसमें लोगों को कि भाई हम हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अगर वॉयलेंस होता है, किसी को जाने नहीं दिया, क्योंकि 7% भी तो आए होंगे वोट डालने के लिए, तो लेकिन ये जो रोका जा रहा है, ये जो कॉल है कि साहब जाएंगे तो हम टारगेट करेंगे पोलिंग स्टेशन को, और जो मैं बात कर रहा हूँ हिंसा की,
तो पहले पहली बात समझ आई कि उनको रोक क्यों रहे हैं, किसी को तो रोक नहीं रहा है, हुर्रियत बॉयकॉट की कॉल देते हैं, वो सीधे बात बता रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, तो बाहर आने तो लोग एहतजाज करेंगे, इट गोज टू द रूट कॉज, मसला वही है, इलेक्शन करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कश्मीरियों पे, 80% लोग पड़े वोट पड़े, आप 2014 की बात लीजिए, 2014 में 70% लोग शायद वोट पड़े होंगे और आज 7%, कश्मीरी क्या चाहते हैं वो लाउड और मैसेज है।
लेकिन मैं बशारत आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है,
7% लोग सिर्फ वोट देने आए हैं, क्योंकि इसलिए आए हैं क्योंकि साथ 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 जो बाकी 93% है वो अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई वो अपना विल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई हम वापस नहीं आ बाहर नहीं आ रहे हैं, नाउ इफ यू फोर्स अस आउट वी विल कम आउट बट वी विल कम आउट विद काउंटर वायलेंस।
ये सेपरेटिस्ट जो है वो कभी अपने बच्चों को आगे नहीं करते हैं, आप ही लोग जो नौजवान है वो आगे हो जाते हैं, इनका तो कोई आता नहीं आगे लड़ने के लिए, आप एक जर्नलिस्ट हैं आपको क्या
जी लगता? मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई भी सच्चाई है कि सेपरेटिस्ट, अगर किसी एक लीडर की बात करें पर्टिकुलरली, उनमें से 3 सेपरेटिस्ट है जो मेजर हम काउंट करते हैं, जिनको उनके वो जो उनका अपना आइडियोलॉजी है वो सब्सक्राइब करते हैं, उससे ज़रूरी नहीं है कि उनके सारे फैमिली मेम्बर्स एंटायरली रिस्पॉन्सिबल है उनकी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब करें।
ये बहुत नारे लगते हैं कैंपसेस में, खासतौर से JNU जामिया से और भी जगहों से, कि आज़ादी चाहिए, ये किस चीज़ से आज़ादी चाहिए?
प्रॉब्लम ये है मीडिया में, और प्रॉब्लम ये है मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल सर्कल्स जो दिल्ली में बैठ के बात करते हैं, उनमें ये है कि वो लोगों को इंडिविजुअल को नहीं देख रहे हैं एज ए माइंड, दे डोंट सी इट कि ये कैपेबल है अपना डिसीजन खुद लेने का, वो यही समझते हैं कि शायद सारे डिसीजंस वहाँ पे गिलानी साहब लेते हैं।
आपकी पढ़ाई हिंदुस्तान के दूसरे जगहों पर रहकर होती है, कॉलेजेस में होती है, तो इंडिया एज अ स्टेट आप उसको रिजेक्ट करते हैं सारी फैसिलिटी लोग के भाई आप एंजॉय करते हैं?
हाँ बिल्कुल, हम यहाँ आके फैसिलिटीज जो इंडियन स्टेट ने अपने बच्चों के लिए खड़ा की है वो एक्सप्लॉइट इसलिए करते हैं क्योंकि यही अपॉर्चुनिटीज इंडिया हमें डिनाई करती है हमारे घर में। कश्मीर यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, वहाँ पे आपने सारा रिस्ट्रिक्ट करके रखा, आप यहाँ पे चिल्ला के बोलते हो कि कन्हैया कुमार आईसा ABVP दे कैन डू पॉलिटिक्स, बट कश्मीर में तुम लोग कैंपस में पॉलिटिक्स नहीं करोगे।
कश्मीरी नौजवानों के सपने क्या हैं, ये आप बताएंगी?
देखिए मेरा अगर कोई सपना है, मैं एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर भी हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम मैं कश्मीरी एक PhD स्टूडेंट हूँ और एक ह्यूमैनिटेरियन वर्कर हूँ, तो एक ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर देखती हूँ, तो मुझे मैं चाहती हूँ कि एक पीस आए, एक पीस किस तरीके से आए वो तो खुदा जानता है।
कश्मीरी नौजवानों से बात कर रहे थे सलमान रवि। ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। तमिलनाडु की आरके नगर विधानसभा सीट पर वोटर्स को प्रभावित करने के लिए पैसे के इस्तेमाल की खबरों के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव को रद्द कर दिया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर पर वोटर्स को पैसा बांटने का आरोप भी लगा था। इस निर्वाचन क्षेत्र में 12 अप्रैल को चुनाव होने थे। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन होने की वजह से इस सीट पर उपचुनाव जरूरी हुआ था। इमरान कुरैची की रिपोर्ट।
पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने अवरकुरुची और तंजावुर में चुनाव रद्द कर दिया था। कारण था कि तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दल यानी कि अन्ना DMK और DMK मतदाताओं को पैसे बांट रहे थे। कल देर रात को चुनाव आयोग ने वोट के लिए पैसे देने की वजह से आरके नगर का भी उपचुनाव रद्द कर दिया। ये निर्णय चुनाव आयोग ने तब लिया जब आयकर विभाग ने 33 जगहों पर छापे डालकर करोड़ों रुपये बरामद किया और खास बात ये थी कि 89 करोड़ रुपये बांटने का सबूत भी मिला। दिलचस्प बात यह है कि वो सबूत आयकर विभाग को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर के MLA हॉस्टल के कमरे से मिला। तो हमने यह सवाल पूछा कि क्या तमिलनाडु में वोट के लिए रिश्वत देना आदत सी पड़ गई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन गोपाल स्वामी ने BBC को बताया।
देखिए साहब, ये पैसा देना आदत बन गई, पैसा लेना आदत बन गई, और इसमें कोई हमारी हमारी सामने तो खड़ा नहीं हो सकता। पूरे हिंदुस्तान में हमारा नंबर एक है और नंबर एक ही रहेगा, अभी भी है।
दरअसल वोट के लिए पैसे देने की आदत तो भारत में पारंपरिक है। एक जमाना था जब पैसे सिर्फ आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों में दिया जाता था, लेकिन 2009 में तमिलनाडु में एक अनोखी योजना लागू हुई। तिरुमंगलम के उपचुनाव में मतदाताओं को सुबह के अखबार के साथ एक लिफाफे में नए नोट डालकर दिया गया। लिफाफे के साथ वोटर स्लिप भी होती थी, ये कहते हुए कि डीएमके को वोट दें। 2016 में अन्ना डीएमके ने भी इस योजना को अपना लिया और अवरकुरुचि और तंजावुर में जबरदस्त तरीके से लागू किया। दरअसल 2016 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बरामद किया था और आर के नगर में हर वोट के लिए 4,000 रुपये देने का भी आरोप है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री ने कहा,
ये तो बिल्कुल गलत है और ये परंपरा या ये जो आदत लोगों की भी और राजनीतिक दलों की तरफ से और उम्मीदवारों की तरफ से भी आदतें बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई हैं और ये प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही हानिकारक भी हैं, क्योंकि जो आदमी इतने पैसे खर्च करके जीतता है वो जीतने के बाद पैसे वसूली में लगा रहता है और जनता की सेवा में कम समय दे पाता है। तो हम तो इलेक्शन कमीशन को बधाई देते हैं कि वो इस हालात में उन्होंने इलेक्शन को कॉम्प्रोमाइज किया।
तमिलनाडु में अरबपुर आईकम नाम का एक संस्था है जो चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ता है। इस संस्था के जयराम वेंकटेशन का कहना है,
रीजन इज प्राइमरली बिकॉज़ तमिलनाडु हैज आई थिंक तमिलनाडु हैज मच मच बिगर करप्शंस गोइंग ऑन देन एनी अदर स्टेट।
इस तरह के वाक्या आपको यही दिखाते हैं कि तमिलनाडु में कितना भ्रष्टाचार है और इसीलिए ये पैसा चुनाव में इस पैमाने पर उपयोग होता है। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को ये भी सिफारिश की थी कि जो उम्मीदवार कैश फॉर वोट में फंसते हैं उनको फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। ये थे जयराम वेंकटेशन के शब्द। आर के नगर का उपचुनाव रद्द होने से एक बात जो सामने आती है वो ये है कि राजनीतिक पक्षों के पास अभी भी बहुत सारा काला धन नए नोटों में उपलब्ध है। इतना पैसा कहाँ से आया उसका जवाब शायद ही नहीं मिलेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
सोमवार के दिन आप इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियों का। आपके पत्रों के साथ हैं राजेश जोशी और सुमिरन प्रीत कौर।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और मेरे साथ हैं सिमरन प्रीत कौर। सिमरन जी, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं, बहुत सारी ईमेल्स हैं, बल्कि ऐसा कुछ होने लगा है इस बीच ईमेल हमारे पास ज़्यादा आने लगी हैं और चिट्ठियों की तादाद थोड़ा सा कम हुई है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि हमारे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले जो श्रोता हैं, जो रेडियो पे हमें सुनते हैं और पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय चिट्ठियाँ लिखते हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनमें कुछ हताशा आ गई हो और ये कह रहे हैं अरे हमारी चिट्ठी तो इस्तेमाल ही नहीं होती?
नहीं, मुझे लगता है अब डिजिटल
सब लोग हो गए, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है, तो शायद हमारे पास ज़्यादा चिट्ठियाँ आती हैं। लेकिन मैं आज, अगर आपकी इजाज़त हो,
बिल्कुल,
एक चिट्ठी मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक बच्ची है जिसका नाम है सुनीता करेला, गाँव केलनिया, तहसील रावतसर, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान से लिखती हैं। सबसे पहले मैं बीबीसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्ते कहती हूँ। बीबीसी को नियमित रूप से तब से सुन रही हूँ जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी। अच्छा, वो कक्षा 8 में अब पढ़ती नहीं है। कक्षा 8 में जब पढ़ती थी और अब मैं बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रही हूँ। लिखती हैं, मुझे बीबीसी की निष्पक्षता और पवित्रता पर पूरा यकीन है और आपसे उम्मीद है कि आप इसे बनाए रखेंगे। सबसे पहले मैंने बीबीसी पर राजेश जोशी को ही सुना था और आज भी कान उनकी आवाज़ को तरसते हैं। अरे नहीं सुनीता करेला, मेरी आवाज़ को क्यों आपके कान तरसेंगे, मैं तो यहाँ मौजूद हूँ रेडियो पे आपके साथ। और हफ्ते में दो दिन
चिट्ठी पढ़ रही है।
जी हाँ, हफ्ते में दो दिन तो हम लोगों की बातचीत होती है। बहरहाल आगे लिखती है, मेरे साथ मेरे दो छोटे भाई और मेरे पापा भी बीबीसी सुनते हैं। मैंने देखा है महिला श्रोताओं के पत्र बीबीसी में कम ही आते हैं, फिर भी आप ये मत सोचना कि महिलाएं बीबीसी नहीं सुनती है। हमें पूरा यकीन है कि महिलाएं सुनती ही होंगी और आपकी चिट्ठी से सुनीता इतनी हमें ताकत मिली है, क्योंकि वाकई हमारे पास जो हमारी महिला श्रोता हैं उनकी बहुत कम चिट्ठियां आती हैं। इसलिए अगली चिट्ठी में हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये लिखिएगा।
तो राजेश जी, आपने चिट्ठी से शुरुआत की है तो मैं इसको ईमेल के साथ
ईमेल की तरफ आप ले जा रही हैं। हालांकि मेरे पास दो पोस्ट कार्ड रखे हुए, इनको मैं कोशिश करूंगा
कि बारी आएगी।
बारी आएगी।
तो ये ईमेल हमें भेजा है आसिफ करीम ने।
फौलाद तारा शम्स अर्दकान ईरान से, मैं देखिए पढ़ रहा हूँ इसको, अच्छा ईमेल ईरान से आया है, इनकी ईमेल्स पहले भी आई हैं, क्या लिखते हैं?
इन दिनों बीबीसी पर राग रागिनी की बहार है, चाहे वो अमजद अली खान साहब की नई किताब पर आधारित रेहान साहब की विवेचना हो या फिर यतेंद्र मिश्र की मेरे संग गुनगुनाओ है, उस पर सचिन देव बर्मन पर आधारित जो प्रस्तुति थी, बस इस माहौल को कुछ दिन तक
और जारी रखे। लिखते हैं आसिफ करीम साहब, कुछ अपने बारे में बताइए, आप ईरान में अर्दकान में रहते हैं, वहाँ से हिंदी में ईमेल लिखते हैं और इतनी खूबसूरत सुंदर बातें आप लिखते हैं, तो आप वहाँ कैसे पहुँचे, क्या करते हैं, हिंदुस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है, ये भी लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको ये राग रागिनी जिसको आपने कहा है ये बहुत पसंद आ रहा है। एक आप कहें तो मैं पोस्ट कार्ड ले लेता हूँ। ये पोस्ट कार्ड हमें लिखा है अशोक कुमार ठाकुर ने, ग्राम मालीटोल अदलपुर दरभंगा बिहार से। लिखते हैं लेखिका कमला दास के बारे में नई नई जानकारी मुझे मिली, विवेचना जो रेहान फजल ने की थी उसके बारे में लिखते हैं ये। मैं पहली बार लेखिका कमला दास का नाम मैंने सुना और दोनों उनके बेटों के बारे में भी नई नई जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। रेहान फजल की विवेचना को तो क्या कहने, वो तो हम जानते ही हैं। एक और चिट्ठी में लगे हाथों पोस्ट कार्ड पढ़ ही देता हूँ। ये पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है खारा बेरा भीमावता तहसील लूणी जिला जोधपुर राजस्थान से, और लिखने वाले ने अपना नाम साधर धन्यवाद सा तो लिखा है लेकिन अपना नाम लिखना भूल गए हजरत। अच्छा चिट्ठी में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि बीबीसी हिंदी सेवा के सभी पत्रकार महोदयों को अध्यापक राजू राम सेन का प्यार भरा नमस्कार। यहाँ इन्होंने नाम लिखा है
जी।
इनको समीर आत्मा मिश्र की रिपोर्टिंग बहुत अच्छी लगी, ये उन्होंने लिखा है। उत्तर प्रदेश से एक खबर आई थी कि 70 छात्रों को निर्वस्त्र कर उनकी जांच की गई, ये रिपोर्ट काफ़ी उनको झकझोरने वाली लगी। तो ये चिट्ठियां हमारे पास आई हैं पोस्ट कार्ड से, खास तौर पे जो चिट्ठी लिखते हैं डाक से, जो हमारे श्रोता चिट्ठी लिखते हैं उनके लिए मैं खास तौर पे कहना चाहता हूं कि आपकी चिट्ठी आने में हमें हमारे पास समय ज़रूर लगता है लेकिन आपकी भावनाओं को हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। ईमेल आप लिखेंगे एकदम हमारे पास पहुंच जाएगा लेकिन हम इसमें फ़र्क नहीं करते कि कौन ईमेल से लिख रहा है और कौन चिट्ठी लिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जोशी का और
मेरा भी शुक्रिया
सुमिरनप्रीत कौर का भी, तमाम हमारे श्रोताओं जिन्होंने हमें चिट्ठियां लिखी। चलते चलते पता बताता हूँ, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और आज IPL में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला किंग्स इलेवन पंजाब से हो रहा है, मैच इंदौर में है, टॉस हो चुका है। बात करते हैं वैभव दीवान से, क्या खबर है?
बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा यह मुकाबला। टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रियान जी आज का मैच हिस्ट्री बन सकता है, पूछे कैसे
बताइए।
क्रिस गेल का अगर बल्ला चलता है, अगर वो सिर्फ 25 रन और बनाते हैं तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। और शायद इसी गेल की आंधी को देखने के लिए मैं देख रहा हूं टीवी पर सामने इंदौर का होलकर स्टेडियम भरा भरा सा लग रहा है। किंग्स इलेवन पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच आज तक IPL में 18 मैचेज हुए जिनमें से 10 पंजाब जीता है, तो यानी आंकड़े पंजाब के साथ हैं। 18 मैचेस जो हैं उनमें से 10 पंजाब जीता, तो पंजाब के साथ आंकड़े हैं। बेंगलुरु की टीम जो है उसमें विराट कोहली चोटिल हैं और एबी डिविलियर्स जो हैं वो भी शायद इस मैच में ना खेल पाएं, तो उम्मीदें गेल और केदार जाधव से। इंदौर की पिच धीमी है, यहां ज़्यादा रनों की उम्मीद नहीं की जा सकती, तो देखना यह होगा कि दोनों टीमों में से कौन सी किस पर हावी होगी, बल्ले से होगी या गेंदबाजी से होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद वैभव आपका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने भारत के कथित जासूस कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक एजेंट हैं। उधर भारत ने जाधव को मौत की सजा दिए जाने की स्थिति में इसे जाधव की सुनियोजित हत्या की कोशिश बताया है। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने कहा है कि दुनिया में जो लोग मासूमों को निशाना बनाते हैं अमरीका उनका संज्ञान लेगा। स्पेन में रूस के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें संदेह है कि इस व्यक्ति ने कंप्यूटर हैक करते हुए अमरीका में बीते साल हुए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी। बीबीसी समाचार। दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।